जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय
इस प्रकार से जो काला
कालिया कृष्णदास है, इनका दो नाम हुआ करते थे, काला कृष्णदास और कालिया कृष्णदास। तो चैतन्य चरितामृत में दो पर्सनालिटी एक ही नाम के, काला कृष्णदास एक चैतन्य महाप्रभु के संग में दक्षिण भारत गए थे महाप्रभु के सेवक बन के, और फिर आप देखते हैं कि किस प्रकार से केरल में वो भट्टाधारियों की स्त्रियों से आकृष्ट हो गए थे और चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर चले गए थे। तो ये दूसरे काला कृष्णदास है या कालिया कृष्णदास है। ये चीज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने चैतन्य भागवत के तात्पर्य में लिखा है। तो महाप्रभु के जो भी पार्षद है वो कृष्ण लीला में विद्यमान है। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि कृष्ण लीला में है, वही चैतन्य लीला में श्रीवास पंडित के रूप में आते हैं, श्रीवास ठाकुर के रूप में, वही श्रीमती राधिका गदाधर पंडित के रूप में आती है, वही सत्यभामा जगदानंद पंडित के रूप में आती है। तो उसी प्रकार से जो गौर गणोदेश दीपिका नामक एक ग्रंथ लिखा है, चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे शिवानंद सेन, उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था कवि कर्णपुर, वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से एक ग्रंथ है गौर गणोदेश दीपिका, गौर गण उद्देश दीपिका, गौरांग के गण कौन है इसको उन्होंने प्रकट किया है। ऐसे दो ग्रंथ है, कृष्ण गणोदेश दीपिका, गौर गणोदेश दीपिका। तो गौर गणोदेश दीपिका में उन्होंने क्या किया है, जितने भी चैतन्य महाप्रभु के संगी थे, अनुयायी थे, पार्षद थे, उनको उन्होंने प्रकट किया है कि यही संगी कृष्ण लीला में कौन है। तो उसी प्रकार से ये जो काला कृष्णदास है या कालिया कृष्णदास है जिनका वर्णन करते हुए कवि कर्णपुर अपने ग्रंथ गौर गणेश दीपिका में कहते हैं, काला श्री कृष्णदास सयो लवंग सखा ब्रजे। ये कौन है, भगवान के जो 12 प्रमुख गोपाल है, 12 जो सखा है उनमें से एक सखा है लवंग सखा, द्वादश गोपाल जिनको कहा जाता है। तो ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि कुछ पार्षद महाप्रभु से बहुत आकर्षित रहते हैं और कुछ पार्षद चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से। तो ये नित्यानंद प्रभु के बहुत घनिष्ठ संगी थे या सखा थे या पार्षद थे। तो ऐसे ये कालिया कृष्णदास गौर कृष्ण लीला में लवंग सखा है और चैतन्य भागवत में उनका वर्णन आता है, प्रसिद्ध कालिया कृष्णदास त्रिभुवने गौरचंद्र लभ्य जहार स्मरणे, कि प्रसिद्ध कालिया कृष्णदास त्रिभुवने, ये जो कालिया कृष्णदास है केवल इसी जगत में प्रसिद्ध नहीं है, इनकी ख्याति ये व्यास भूषण त्रिभुवन, जैसे हम गुरु की वंदना करते हैं, तो उसी प्रकार से कालिया कृष्णदास त्रिभुवन में फेमस है। और चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं गौरचंद्र लभ्य है जहार स्मरण है, मतलब कालिया कृष्णदास का स्मरण ही इतना प्रभावशाली है, कोई व्यक्ति ऐसे इस भक्त का चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है इनका केवल स्मरण करता है, उनके स्मरण मात्र से गौरांग महाप्रभु की प्राप्ति होती है। आप देखो कितना प्रभाव, इसलिए वैष्णव को कहा गया है कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार, तोमार दर्शने पवित्र कर यही तोमार गुण। तो मतलब हम सोच नहीं सकते कि भगवान के भक्त का जो पोजीशन है स्थिति है वो कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी प्रभावशाली है। तो ऐसे कालिया कृष्णदास का स्मरण करने मात्र से गौरांग महाप्रभु का प्राप्ति हो सकता है, इसलिए हमें देखना चाहिए सोचना चाहिए कि महाप्रभु के जो पार्षद है इनमें कितना सामर्थ्य है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ब्रह्मांड तारे की शक्ति धरे जने जने, महाप्रभु का एक एक भक्त इतना पावरफुल है इतना शक्ति संपन्न है। कितनी शक्ति है? एक एक में इतनी शक्ति है, अकेला ब्रह्मांड का तारण कर सकता है। हाँ, प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद उसके उदाहरण है। तो इस प्रकार से, इसी कारण से कृष्णदास कविराज ने कहा, गुरु भगवान वैष्णव तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। इन तीनों का स्मरण कोई करता है उसके सारे विघ्नों का विनाश हो जाता है। तो इसलिए कालिया कृष्णदास, हाँ, उनका स्मरण इतना प्रभावशाली है। इसलिए हमारे कई आचार्यों ने, मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था जिसका नाम था नामामृत समुद्र। तो अभी मुझे लगा, पहले मैंने जब उसको शुरू, मुझे लगा कि इसमें केवल होली नेम का पूरा नामामृत, नाम का अमृत का समुद्र, ओशन ऑफ होली नेम। मैंने जब उसको शुरू किया कई साल पहले पढ़ रहा था, इतना छोटा सा बुक है नामामृत समुद्र, तो मुझे लगा कि भगवत नाम की महिमा से भरा है। जब मैंने शुरू किया उस ग्रंथ में केवल भक्तों के नाम है, पूरा ग्रंथ भगवत नाम से भरा नहीं है। वो ग्रंथ केवल किस नाम से भरा है? भक्तों के नामों से, महाप्रभु के सारे भक्तों का नाम, उनका गुणगान, इस भक्त का स्मरण करने से ये, इस भक्त का स्मरण करने से। इस प्रकार से भक्त का नाम भी हम स्मरण करते हैं, तो भगवान, क्योंकि जिस प्रकार से हम भगवान नाम का जप करते हैं, कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं रोज, तो भगवान भी अपने भक्तों से इतना अधिक प्रीति रखते हैं कि वो भी भक्तों के नामों का सदैव जप करते हैं। इसलिए कृष्ण जब ब्रज में होते हैं तो ब्रज की जो बालाएं हैं उनका नाम उच्चारण करते ही करते हैं, बल्कि जो गव्य है उनका नाम एक सौट मनके की माला पर भगवान करते हैं, जप करते हैं, उनके हाथ में माला रहती है जो कृष्ण जाते हैं। तो ये एक सौट ग्रुप है उनके, गवों के कितने ग्रुप है? 108। उनके अलग अलग कलर, अलग अलग फेस आदि की साइज से भगवान ने बांटा है, और सदैव उनके नामों का उच्चारण करते। कृष्ण भी अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं जब उनके प्रिय भक्तों का वो नाम उच्चारण करते हैं। तो इतना प्रभाव है, तो फिर आप सोच सकते कि भगवान के भक्तों के नाम में का इतना प्रभाव है, तो फिर भगवत नाम का कितना प्रभाव हो सकता है। क्यों भक्तों के नाम में प्रभाव है? क्योंकि ऐसे भक्तों भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी जब गया से वापस आकर एक दिन जब वो बैठे थे नवदीप में, तो एकांत में वो चिल्लाने लगे, क्या गोपी गोपी गोपी, इसे की शिक्षा देने के लिए। तो एक मूर्ख स्टूडेंट था, वो कहते हैं सारे शास्त्र कह रहे हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवल, और एक हिमायत पंडित ये गोपी गोपी नाम का उच्चारण कर रहा है, क्या मिलेगा गोपी गोपी नाम? शास्त्र कह रहे भगवत नाम का उच्चारण करो। चैतन्य महाप्रभु उसके पीछे भागते डंडा लेकर उसकी पिटाई करने के लिए। तो महाप्रभु का वो जो आचरण है वो हमें ये सिखाता है कि भगवत नाम तो पवित्र करने वाला है, सब कुछ देने वाला है, लेकिन भगवान के भक्तों का नाम भी कुछ कम नहीं। इसलिए हम हमेशा गाते हैं प्रभुपाद प्रभुपाद, है कि नहीं? भक्त प्रभुपाद नाम लेते तो और कूदते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र में थोड़ा सा आलसी हो जाते कई बार, लेकिन फाइनली जब प्रभुपाद प्रभुपाद चिल्लाते नाचते कूदते हैं, तो भगवान के भक्तों के नामों में इतना सामर्थ्य है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को हृदय में धारण करते हैं। इसलिए जब दुर्वासा मुनि गए भगवान विष्णु के पास, तो उन्होंने कहा अहम भक्तो पराधीन, मैं तो मेरे भक्त के आधीन हूं, नहीं स्वतंत्र एव द्विजा, हे ब्राह्मण मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरा भक्त मेरे हृदय में निवास करता है और मैं मेरे भक्त के निवास हृदय में निवास करता हूं। तो इस प्रकार से शास्त्र वर्णन करते हैं, कि भगवत नाम प्रभावशाली है ही, लेकिन भगवान के भक्तों का नाम भी बहुत अधिक प्रभावशाली है। इसलिए भक्तों का नाम हमें कैसे आदर पूर्वक उच्चारण करना चाहिए, हम कैसे सोचते हैं, है ना। इसलिए तो हमारे संप्रदाय में ये शिक्षा है, सारे वैष्णव को नाम दिया जाता है, भगवत नाम से ही संबंधित होता है। तो लेकिन हम भी भक्तों के नामों का उच्चारण अनादर की भावना से करते हैं, तो कैसे संभव होगा कि कृष्ण नाम हमारे मुख से आदर के साथ निकलेगा या कृष्ण नाम की हमें कृपा प्राप्त होगी? इम्पॉसिबल है। क्योंकि भगवान या जैसे संसार में भी हम देखते हैं, माता पिता तब आदि आनंद अनुभव करते जब देखते कि कोई बच्चे को बड़ा आदर से बुला उसके पुकार रहा है, बच्चे को वो चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है, गुस्सा करके पुकार रहा है, तो पिता थोड़ी माता पिता दोष होंगे। कृष्ण तो कहते अहम बीज प्रदा पिता, पिता महर्षि जगतो माता धाता पिता मह, पिता मह भी मैं ही हूँ, भगवान कहते माँ भी हो मैं, फादर भी हो। तो इस प्रकार से कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं जब हम उनके भक्तों का नाम का आदर के साथ उच्चारण करते हैं, और तभी वास्तव में भगवत भक्तों की कृपा से ही भगवत नाम हमारे जीवा में नृत्य कर सकता है, अन्यथा असंभव है। इसलिए भगवत नाम के प्रति हमारा रुचि क्यों नहीं रहता, क्यों हमें हरि नाम लेना कष्टदायक होता है, बल्कि जो आनंद बुद्धि वर्धन है, आनंद का वर्धन करने वाला है, इसलिए हमें कष्टकारक होता है, क्योंकि भगवत भक्तों के प्रति हमारा अनुराग नहीं है, आसक्ति नहीं है। इसलिए भक्तों की जो महिमा है वो सारे शास्त्र गाते हैं, भगवान की महिमा तो गाते ही गाते, बल्कि भागवत आदि में भगवान की महिमा तभी बड़ी हुई है जब भक्तों उनके सन में है। कृष्ण की महिमा इसलिए बढ़ गई कि भक्तों के कारण भगवत महिमा बढ़ती है। नंद यशोदा माता यदि कृष्ण को नहीं मानती तो कृष्ण का इतना गुणगान थोड़ी होता, दामोदर लीला होता क्या? नहीं। तो वास्तव में भक्त ही भगवान को यश देने वाले हैं, फेम देने वाले, इसलिए उनकी माँ का नाम क्या है? यशोदा। उनको यश किसने दिया? छोटे से बच्चे का फेम ग्लोरीज किसने बढ़ाया? उनके भक्त ने, इसलिए उनको यशोदा कहा जाता है कि कृष्ण को भी यश देने वाले, इतना सामर्थ्य है भगवान के भक्त में। इसलिए भगवान के भक्त सदैव इस होड़ में लगे रहते हैं कि कैसे भगवान का यश चारों दिशाओं में फैला जाए, वो अपने जीवन को लगाते हैं, और फिर भगवान भी देखते हैं कि अरे ये भक्तगण मेरे यश को फैलाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपना मन अपना शरीर अपना वाणी अपना धन अपना परिवार सब लगा रहे हैं मेरे यश को फैलाने के लिए। तो कृष्ण भी फिर कंपटीशन में आते कि अच्छा आप मेरे यश को फैलाते हो, आपको देखता हूं। तो भगवान भी अपने भक्त के यश को क्या करते हैं? ये यश घुसुक त्रिभुवन, एक भुवन में नहीं, तीन भुवनों में, 14 लोकों में महान भक्तों के यश को फैलाते हैं। तो इस प्रकार से हमें अनुभव करना चाहिए कि भगवत भक्त का जो ग्लोरीज है, भगवत भक्त की जो महिमा है, उसकी तुलना हम किसी और चीज से नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र कहते हैं यदि हमारा भगवान से अनुराग नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन हमारा अनुराग हमारा आसक्ति हमारा अटैचमेंट यदि भक्तों से है तो भगवान से अनुराग होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए कपिल देव को देवहूति माता को कपिल देव कहते हैं मोक्ष द्वारम अपावृतः, कि भगवान के भक्तों से आसक्ति निर्माण हो जाए, भक्तों से हमें प्रेम हो जाए तो मोक्ष का जो दरवाजा है, डोर है, वो हमारे लिए हमेशा के लिए खुला है। क्योंकि कृष्ण से आसक्ति बढ़ाना बहुत टफ है कि नहीं? कृष्ण तो हमारे लिए अचिंत्य है, कृष्ण तो विग्रह के रूप में है, कृष्ण अपने नाम रूप मूल लीला के रूप में शास्त्रों में विद्यमान है, वो हमारे लिए अचिंत्य है, हमारे इस बौद्धिक दृष्टि से परे है, तो इसलिए हमारा कोई उनके प्रति अनुराग नहीं है क्योंकि वो अचिंत्य है। तो लेकिन हमारे आसपास कौन है? भगवान के भक्तगण है। तो भक्तों से हम अनुराग बढ़ाते हैं, अटैचमेंट बढ़ाते हैं, तो फिर तीव्रता से शास्त्र कहते हैं कि हमारा अनुराग भगवान से बढ़ेगा और तब भगवान कृपा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में लीला आती है, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, जहां गोदावरी के किनारे आज वो सिटी है राजमुद्री, वहां बहुत अच्छे इस्कॉन मंदिर है, हम 2009 में गए थे वहां, तो राजमुद्री जहां चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को मिले थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाने के लिए निकले थे, यहां से कहां से जगन्नाथपुरी से, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे चैतन्य देव, आप जब दक्षिण भारत जाओगे वहां एक बहुत महान भक्त रहते हैं जिनका नाम रामानंद राय है, बल्कि वो मद्रास के गवर्नर है, एक गृहस्थ है, लेकिन रस शास्त्र का ज्ञान और कृष्ण भक्ति की परम सीमा से वो ज्ञात है। कहते आप जरूर जब दक्षिण भारत जाए ना तो वो भक्त को मिलके आ जाओ। महाप्रभु ने कहा हाँ। और वास्तव में तीर्थ यात्रा का फल क्या है? जाकर उस स्थान में वैष्णवों का संग करना, यह असली तीर्थ यात्रा है। क्योंकि वैष्णव एक चलता हुआ तीर्थ है, महान भक्त जब चलते हैं तो उस स्थान को पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता। क्यों तीर्थ है? क्योंकि सदैव उनके हृदय में गदाधर कृष्ण निवास करते हैं, गदा धारण करने वाले भगवान चतुर्भुज रूप, तो इस कारण से उनमें इतना सामर्थ्य है कि तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। वैष्णव यदि तीर्थों में नहीं है, धाम आदि में नहीं है, तो वो धाम या तीर्थ अपने पवित्रता को खो देता है। तो इसी कारण से तीर्थ का मतलब केवल जल नहीं है या जल में जाकर स्नान करना आदि नहीं है, हाँ वो तो एक कौवे की बात ही है, सब एवं वो खरा। जो लोग तीर्थ धाम आदि जाके वैष्णव का संग नहीं करते, उनकी तुलना गौवे गाय या कौवे से की गई है, गो खरा, खरा मीन्स गधा। तो इस कारण से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हाँ मैं जब जाऊंगा दक्षिण भारत रामानंद राय से मिलूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब गए गोदावरी, और आज भी आप जाते हैं, जब महाप्रभु मिले थे वहां गोदावरी कम से कम इतनी 4 किलोमीटर चौड़ी है, इतना लंबा ब्रिज है, इतना लंबा और बिल्कुल नीला पानी, इतना क्लीन क्रिस्टल क्लियर पानी, हम जब गए तो देखने मात्र से हम आनंदित हो रहे थे। तो वहां जब महाप्रभु पहुंचे तो महाप्रभु गोदावरी में स्नान करने लगे, तो उसी समय भगवत की ऐसी योजना थी कि ये रामानंद राय अपने सारे सेवकों के संग में पालकी में बैठ के आ रहे थे स्नान करने के लिए, गवर्नर है। तो उस समय फिर चैतन्य महाप्रभु को देखकर ही रामानंद राय को भावेश में आ जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं और कहते हैं आप रामानंद राय तो नहीं है? रामानंद कहते आपके बारे में मुझे किसने बताया था? जगन्नाथपुरी में निकलने से पहले सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था। तो जब वो दोनों एक दूसरे का आलिंगन करने लगे, फिर उन्होंने कहा कि हम मिलकर कृष्ण कथा करेंगे, क्योंकि भक्त आपस में मिलते तो क्या करते हैं? बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं दुश्यन्ति च रमन्ति च। उनका प्राण यही है, भक्तों का लाइफ प्राण जीवन है कृष्ण कथा। उसके अलावा उनका जीवन नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा कि उन्होंने कहा मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं आपका दर्शन हुआ। बल्कि चैतन्य महाप्रभु सन्यासित है और रामानंद राय गृहस्थ थे, महाप्रभु उनको देखकर कहते कि मैं पवित्र हो गया आपके संग से। बल्कि सन्यासी सारे आश्रमों का गुरु है, सर्वश्रेष्ठ है, सारे वर्ण और आश्रम को सन्यासी की सेवा में लगना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप कृष्ण के प्रति अनुराग रखते हो, मैं आपको देखकर ही पवित्र होता महसूस करता हूं। फिर उन दोनों ने कई दिनों तक वहां कृष्ण कथा की, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण किया और रामानंद राय ने लेक्चर दिया। इतना अच्छा लेक्चर है वो, चैतन्य चरितामृत को उनका दोनों का जो सम्मान है उसको पीएचडी कहा गया है। चैतन्य चरितामृत का पीएचडी कहते ना प्रभुपाद। पीएचडी क्यों है? क्योंकि रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का जो सम्मान है वो बहुत हायर, बहुत उच्च भगवत भक्ति का जो रहस्य है उसका उद्घाटन करता है या स्थापित करता है। तो इस कारण से उसको पीएचडी कहते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के दिन उनके संग में बहुत आनंद में गुजरे और महाप्रभु ने कहा देखो मैं अभी आगे थोड़ा यात्रा करके मैं वापस जगन्नाथपुरी जाऊंगा और तुम भी क्या करो अपने ऑफिस आने से समय निकाल के जगन्नाथपुरी आओ, हम दोनों मिलके कृष्ण कथा करेंगे सदैव। तो महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा को वो कंप्लेंट खत्म करते मुंबई तक आए थे चैतन्य महाप्रभु। मुंबई में जो सुरपारक नाम का स्थान है ठाणे के आसपास, इस मुंबई में आए थे चैतन्य महाप्रभु। वहां से महाप्रभु फिर वापस चले जाते हैं और तो ये रामानंद राय से रहा नहीं जा रहा था, कब मैं अपने गवर्नर का ड्यूटी खत्म करूं, कब जाके जगन्नाथपुरी में रहूं और चैतन्य महाप्रभु का संग लाभ करूं। तो फिर रामानंद राय आखिरी में आते छोड़कर आते पूरी जगन्नाथपुरी में आते हैं और वो कहते हैं जो राजा प्रताप रुद्र के अंडर वो नौकरी करते थे, तो राजा प्रताप रुद्र को उन्होंने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के संग में निवास करना चाहता हूं, ये गवर्नर आदि का बिजनेस सब छोड़कर उनका संग में कृष्ण कथा में जीवन बिताना चाहता हूं। तो राजा प्रताप रुद्र इतना अधिक आनंदित हुआ, राजा प्रताप रुद्र ने कुछ सोचा नहीं, उन्होंने कहा तुमको मैं मुक्त करता हूं, इतना ही नहीं तुम महाप्रभु के संग में रहना चाहते हो और आपको मंथ सैलरी भी दूंगा, सब कुछ केयर करूंगा, आपकी छुट्टी लाइफ टाइम छुट्टी। तो इतना राजा प्रताप रुद्र आनंदित हो रहा था और उनका प्रेम रामानंद राय से था। रामानंद राय को उन्होंने छुट्टी दी, जीवन भर सैलरी आदि और महाप्रभु को जब ये प्रताप रुद्र और रामानंद राय जगन्नाथपुरी में आए और राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए और रामानंद राय गए नहीं, जा रहे थे रास्ते में मुड़ गए और महाप्रभु के पास आ गए दर्शन करने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जगन्नाथपुरी में आए तो सबसे पहले जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए, मेरे पास क्यों आए? कहते हैं मेरा मन क्या है, सारथी है, मेरे पांव रथ है, ये कार गया है वहां सीधा आपके पास ले आया, आप वहां जगन्नाथ से अभिन्न है। तो जब आए तो रामानंद राय ने कहा कि प्रताप रुद्र ने मुझे छुट्टी दे दी है, इतनी कृपा की है मेरे ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जरूर कृष्ण उस राजा प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि राजा प्रताप रुद्र क्यों कृष्ण क्यों राजा प्रताप रुद्र के ऊपर प्रीति करेंगे, अपनी कृपा करेंगे, क्योंकि उस राजा का जो प्रीति है वो आपके प्रति है। किसके प्रति? रामानंद राय के प्रति। यही एक गुण महाप्रभु ने कहा, बल्कि चैतन्य महाप्रभु कभी राजा को मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि राजा धन और स्त्री उपभोग में सदैव लिप्त होता है, तो इसलिए महाप्रभु कभी भी मिलना मिले नहीं। हाँ उनको कई नित्यानंद प्रभु ने कहा सारे भक्त गए रहे राजा को मिले हैं महाप्रभु कहते नहीं, राजा का मतलब है विषय भोगी, मैं सन्यासी हूं, एक सन्यासी को ऐसे व्यक्ति से मिलना अपनी आत्महत्या करना है या जान बूझ के विष पीना है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा नहीं कर रहे थे लेकिन महाप्रभु ने कहा उनके ऊपर कृपा हो जाएगी रामानंद राय के ऊपर, क्यों? क्योंकि उनमें एक गुण है, क्या गुण है? आप जैसे वैष्णव से वो प्रीति रखता है बस। हाँ इसी कारण से कृष्ण अपने आयति की कृपा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान से प्रीति होना, भगवत सेवा आदि तो बहुत हमारे लिए दुर्लभ सा है कि नहीं, कठिन है, लेकिन आप देखो भगवान के प्रति हमारा आसक्ति तभी तीव्र हो सकता है जब भगवान के भक्तों के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अब ये अमेरिकन लोग जो इस्कॉन से जुड़े उनको कृष्ण आदि बहुत दूर थे, उनका लगाव सबसे अधिक किससे था? भोपाल से। एक ही गुण, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैला है या शुरुआत में इस आंदोलन ने पकड़ ले ली है, या ये लोग महान भक्त बने आगे सन्यासी है गुरुज हैं ना, पूरे मूवमेंट को चला रहे हैं, इतना प्रचार बढ़ा रहे, एक मेव कारण यही था। क्या कारण था? भगवान से तो प्रीति दूर, उनकी प्रीति किससे थी? प्रभुपाद से, वैष्णव से, गुरु से। यही एक गुण एक भक्त को एक शिष्य को उन्नत कराता है भगवत भक्ति में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है एक भक्त का, भक्तों का या गुरु महान महान वैष्णव का हमारे जीवन में होना, क्योंकि कृष्ण वैष्णव के पास कृष्ण है, क्या है? कृष्ण है। और प्रभु को प्रभुपाद के पास कृष्ण है, प्रभुपाद दे सकते हैं, जैसे उदाहरण दिया आता है एक श्याम सुंदर प्रभु और उनकी पत्नी थी मालती, उनकी एक बेटी हुआ कर छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था सरस्वती। जब ये लोग प्रभुपाद के साथ कलकत्ता आते चेन्नई आए एक बार साउथ में थे, तो प्रभुपाद को किसी ने कृष्ण का विग्रह गिफ्ट किया चांदी का छोटा सा, लोग देते ना थोड़ा सा कभी गिफ्ट करना चाहते आप किसी घर में जाते हो, तो प्रभुपाद को दिया, तो वो बच्ची प्रभुपाद से बहुत प्रेम रखती थी, तो उस विग्रह को प्रभुपाद ने लिया और वो उस विग्रह को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, उसको अपना खिलौने के समान था, थोड़ी बोला करती थी वो, और प्रभुपाद ने क्या किया, लिया और उसको छिपा दिया। तो वो जो सरस्वती है वो ढूंढने लगी और कहा कि प्रभुपाद कृष्ण आपके पास है, कृष्ण आपके पास है, आप कृष्ण दे सकते हैं। सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए, ये तो सही बोल रही है, ठीक है विग्रह तो है लेकिन ओरिजिनली कृष्ण किसके पास है? प्रभुपाद के पास है। तो प्रभुपाद वो छोटी सी जो बच्ची थी सरस्वती उससे बहुत प्रभावित होते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचारक प्रीचर बनने के लिए बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, एक ही चीज जानना चाहिए, कहते हैं कि ये जो छोटी सी सरस्वती है ये भी महान प्रीचर है, बहुत बड़ी प्रचारक है। क्या? प्रभुपाद कहते हैं ये जो जिसको कोई भी मिलता है ना ये कहती है यू नो कृष्णा या वो इज कृष्णा, कृष्ण कौन है, तो ये तुरंत बोलती है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इसको एक ही सेंटेंस आता था, एक ही वाक्य आता था कि कृष्ण परम भगवान है बस। तो प्रचारक बनने के लिए इनफ है आपको ये समझना, क्या कृष्ण परम भगवान है और मैं उनका तुच्छ सेवक हूं। हाँ कहने बोले ओहे कृष्ण आमी तुया दास, रोते हुए व्यक्ति को बोलना चाहिए कि हे कृष्ण मैं कौन हूं, आमी तुया दास, तुम्हारा चरण छाड़ी है वो सर्वनाश, मेरा नाश क्यों हो गया है, आपके चरण कमलों को मैंने त्यागा है बस। तो वास्तव में यही रहस्य है भगवत भक्ति का कि भगवान के भक्तों से प्रीति, तभी कृष्णा उस व्यक्ति को अपने धाम में स्थान देते हैं। दक्षिण भारत में चेन्नई के पास कांचीपुरम है, जो सप्तपुरिया है, मोक्ष देने वाले सात सिटीज है ना, हरिद्वार है, उज्जैन है, काशी है, बनारस है, कांचीपुरम है। कांचीपुरम वहां वरदराज भगवान निवास करते, वरदराज ऐसी मुद्रा में है, उनके हाथ में लिखा हुआ है मां शुचर डरो मत, गीता का श्लोक है। तो बहुत बड़े विग्रह है और बहुत सुंदर है, आकर्षक है। मैं दो तीन बार गया था उनका दर्शन करने। तो वो वरदराज के भक्त थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण। क्या नाम था? कांचीपूर्ण। और जो आगे चलकर रामानुजाचार्य के गुरु बने एक प्रकार से। रामानुजाचार्य के तो बहुत गुरु थे जिनसे वो शिक्षा लेते थे, महापूर्ण आदि। तो ये वरदराज की सेवा कांचीपूर्ण किया करते थे। कांचीपूर्ण कौन सी सेवा करते थे? एकांत सेवा। कौन सी सेवा? एकांत सेवा। ये श्री संप्रदाय में भगवत सेवा का सर्वोत्तम स्तर है, एकांत सेवा। और ये विशेष वैष्णव को ही दी जाती है ये सेवा, जिसमें और वो वैष्णव भगवान का सर्वाधिक प्रिय भक्त होता है। और उस एकांत सेवा में उस भक्त के पास इतना सामर्थ्य होता है कि वो विग्रह से बात करता है और वो विग्रह भी उससे क्या करते हैं? बात करते हैं, सेवा का आदान प्रदान करते हैं। तो पूरे एरिया में सबको पता था कि ये कांचीपूर्ण बहुत सिंपल भक्त था, बिल्कुल नॉर्मल उनके वस्त्र आदि सब चीजें, लेकिन भगवान के प्रति उनका जो प्रीति है वो सर्वाधिक था। तो ऐसे कांचीपूर्ण उनको रोज कई किलोमीटर चल के आना पड़ता था वरदराज की सेवा में। तो एक दिन वो आए तो उनको एक शूद्र व्यक्ति मिला, बहुत गरीब या शूद्र। तो उन्होंने कहा, जिस प्रकार से एकांत सेवा श्रीरंग में रंगनाथ की सेवा विभीषण करते हैं, अभी भी विभीषण आते हैं रंगनाथ की सेवा करने। रंगनाथ की सेवा भगवान राम आदि क्या करते थे, जो विग्रह है रंगनाथ जी, तो वहां से ले गए थे विभीषण, लंका ले जा रहे थे। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मुझे यहाँ रहना है गोदावरी और नदियों के तट पर। तो भगवान वहीं रहे, लेकिन अपना फेस भगवान ने श्रीलंका की ओर किया, अपने प्रिय भक्त को हमेशा देखने के लिए विभीषण को। तो ऐसे कांचीपूर्ण जो भरतराज की सेवा करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय एक शूद्र व्यक्ति उनको मिला, अनपढ़ गवार। उन्होंने कहा, हे कांचीपूर्ण, आप तो भगवान की इतने नजदीक हो, इतने अच्छे सेवा करते हो, भगवान से बात करते हो, प्लीज आप क्या करो, आज वरदराज को पूछो क्या मेरे जैसा तुच्छ जीव उनके धाम जा सकता है क्या, ऐसा उसने पूछा। क्या पूछिए, आप रोज मंदिर में होते, जैसे हमारे पुजारियों को आपको बोलना चाहिए, पुजारी जी आप बहुत क्लोज हो भगवान के, पूछिए कभी कभी। तो ऐसे कांचीपूर्ण को जब इन्होंने पूछा, इन्होंने कहा हाँ हाँ मैं पूछ के ना कल बताऊंगा। तो ये गए कांचीपूर्ण और वरदराज की सेवा करने के लिए, और वो जाके भगवान की सेवा करते थे, फैन करते थे, जब डोर्स क्लोज होते थे दरवाजा मोर पंख से। तो इनको लगा कि इनको, उन्होंने पूछा, भगवान मुझे एक व्यक्ति मिला था, उसने ये पूछा कि वो भगवत धाम जा सकता है कि आपके धाम, उसकी जैसे तुच्छ व्यक्ति। वरदराज ने कहा जरूर, निश्चित रूप से। क्यों क्यों, कई क्या गुण है? वरदराज ने कहा क्योंकि वो आपसे प्रीति रखता है। आपसे क्या है उसको? प्रीति है आप जैसे। और जो भक्त आपसे प्रीति रखता है, जो व्यक्ति, वो क्वालिफाइड है मेरे धाम जाने के लिए। कांचीपूर्ण क्योंकि भगवान के प्रिय भक्त है। तो दूसरे दिन कांचीपूर्ण ने उनको बोला, लेकिन यह नहीं बोला कि आप मुझसे प्रीति रखते हो। मैंने कहा, भरतराज ने कहा है कि आप उनके धाम में जा सकते हो। तो अभी दूसरा दिन, तीसरा दिन गया, तो कांचीपूर्ण को लगा कि आप उनके बारे में बोला है कि मेरे बारे में पूछता हूं खुद के बारे में। तो ऐसे कांचीपुरना जब भगवत सेवा कर रहे थे तो उन्होंने सोचा खुद के अपने बारे में पूछता हूं भगवान से, क्या मैं उनके धाम जा पाऊंगा या नहीं, संशय होता है हमें भगवत सेवा करते हैं तो। तो जब एक दिन तीसरे चौथे दिन वो भगवान को फैन कर रहे थे, डोर्स क्लोज थे, अल्टर के अंदर थे, तो उस समय उन्होंने भगवान को पूछा कि हे भरद्वाज आप बताइए कि मैं आपके धाम जा रहा हूं या नहीं, मेरी क्या स्थिति है। भगवान ने कहा नहीं, फैन कर रहे थे, हाथ से फैन गिर जाता है, आंखों से आंसू निकालते हुए निकल पड़ते हैं गेट से बाहर, चलते जाते कई किलोमीटर वो चले। अभी बस से कांचीपुरम से श्रीरंगम जाने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं, ये सीधा गए श्रीरंगम गए। श्रीरंगम गए, वहां रंगनाथ के एक महान भक्त थे जिनका नाम था महापूर्ण। इन्होंने अपना वेशभूषा आदि सब बदल दिया और जाकर क्या किया, महापूर्ण जो महान भक्त थे उनके घर में जाकर सेवा करने लगे। उनके घर में गाय थी, गोबर उठाना, गौओं को चराने ले जाना, उनके घर के बर्तन धोना, ये सब कार्य करने लगे। और कोई कई दिन बीते और इनके पास एक ही ड्रेस था, एक ही वस्त्र का जोड़ा था। तो एक दिन जब बारिश हो गई, ये गायों को लेकर चराने गए थे, बारिश से भीग के आ गए, जहां गवें बांधी जाती थी वहां ही रहा करते थे, घर में भी नहीं रहते थे, उनके छोटा सा एक घास का कुटिया था उसमें रहा करते थे। और जब बारिश से सारे कपड़े भीग गए तो इन्होंने अपने वो कपड़े उतारे और जो कि पहले कपड़े थे वैष्णव वेश उसको धारण किया और रात के समय अपना जप कर रहे थे। तो उसी समय जिनके यहाँ वो ये नौकरी या ये सेवा कर रहे थे महापूर्ण जो कृष्ण के महान भक्त थे, वो रात को अचानक आए देखने, तो उन्होंने देखा कि ये कौन है, कांचीपूर्ण है, उनको पहचान नहीं पाए थे वो पहले। कांचीपूर्ण सब स्थानों में फेमस थे भगवान के प्रिय भक्त के रूप में। तो महापूर्ण ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे घर में आप बर्तन धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, गवे संभाल रहे हो। तो जब पता चला है कांचीपूर्ण है, महापूर्ण भी दुखी हो जाते हैं। कांचीपूर्ण वापस आते, कहां आते वापस, कांचीपुरम में वरदराज की सेवा में आते हैं। और जब वरदराज का दर्शन करने जाते हैं, अपनी सेवा शुरू करने जाते हैं, हाँ, तो वरदराज का फैन लेते हाथ में, तब वरदराज कहते अभी तुम मेरे धाम जा सकते हो, अभी क्या है तुम मेरे धाम जा सकते, क्यों, महापूर्ण की सेवा में तुम लगे। तो भगवान भी इतने यह है नो, अपने भक्तों से प्रीति रखते हैं, इतना प्रीति रखते हैं, शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तुम ये घोषणा करो नमे भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अभी कृष्ण ने पूरा गीता बोला, कोई भी तो बोल सकते थे, है ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति, तुम बोलो, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं बोलूंगा ना, कभी कभी मैं अपने शब्दों को या प्रतिज्ञा को पालन नहीं करता, अपने भक्त का शब्द का वचन को मैं रक्षा करने के लिए अपने वचनों को भी तोड़ देता हूं, इतना उनका अनुराग है भगवान के वचनों के प्रति। अभी नारद मुनि ने इनको शाप दिया नलकुवर और मणिग्रह को, है कि नहीं, कि जाओ नंद महाराज के आंगन में पेड़ भरो, पहले बोल दिया कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। जो नारद ने वचन दिए कृष्ण को, जब माता यशोदा ने बांधा उखल से, उनको जाना पड़ा उखल को खींचते हुए अपने भक्त के वचन को रक्षा करने के लिए, अरे इतना बोझा ढोते हुए या खींचते हुए भगवान गए घुटने पर, और उन्होंने नारद के वचनों की रक्षा करने के लिए क्या किया, वो वृक्षों को तोड़ डाला। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रीति रखते हैं। हाँ, तो भगवान से प्रीति बढ़ाने का ये उपाय है भक्त सेवा। इसलिए हम कैसे हम कर सकते भक्त की सेवा, इस महीने में हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। प्रभुपाद ने कहा आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करो, मेरे ग्रंथ का वितरण करो, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। ये सरल है, आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल है लेकिन सरल हृदय के व्यक्ति के लिए, कपट हृदय के व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन बना ही नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज को किसी ने पूछा कि वैष्णव का मतलब क्या है, कौन वैष्णव है, तो उन्होंने कहा सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है, सरलता अन्यथा नहीं। जब तक हम सरलता नहीं होगी हमारे हृदय मन आदि की वाणी की, तो भगवान भी हमारे लिए कठिन होंगे। सरल हृदय में कृष्ण क्या होते हैं, सरलता से प्रवेश करते हैं, है ना, सरल हृदय में। कपटता से हम कृष्ण को रोक देते हैं हृदय में प्रवेश करने के लिए। तो इस प्रकार से सारे शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ढूंढते हैं, तो उसमें यही गुणगान है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि असंभव है इस जगत से बाहर निकलना, निस्तार पाए छे केवा, भगवत भक्तों की सेवा के बिना। इसलिए ये हर एक भक्त को शास्त्रों से जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्तों को भगवत सेवा के अलावा कोई और चीज पता नहीं है। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, ये उनका गुण है भगवान के भक्तों का। तो भगवान के भक्तों की कृपा से ही कोई व्यक्ति भगवत भक्ति कर सकता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा है भक्ति जन्म मूल हय साधु संगत। भक्ति का जन्म कहां होता है, हाँ, साधु संगत। तो भक्ति सदैव भक्तों के हृदय में निवास करती है, भगवान के हृदय में नहीं। भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगे न परिचायते, श्रीमद् भागवतम कहता है कि भगवान के भक्तों के संग में ही भगवत भक्ति की जा सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी है, परफेक्शन प्राप्त करना है लाइफ का, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक ही चीज है उसके लिए, साधु संग। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ऐसे नहीं बोला कि थोड़ी सिद्धि है या फिर ये सिद्धि, नहीं, उन्होंने कहा सर्व सिद्धि, सब परफेक्शन। तो हम अपने जीवन की पूर्णता हासिल करना चाहते हैं तो पूर्णता केवल इस एक चीज से हो सकती है, अपने आप को हम भगवान के भक्तों के संग में रखते हैं, उनसे प्रीति स्थापित करते हैं, उनकी सेवा में हम लगते हैं। गुरु वैष्णव भगवान तीने रस मरण, तीने रस मरण हर विघ्न। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए सरल हो जाता है, क्योंकि भक्ति ठाकुर ने कहा एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने। अकेले हमें भगवत भक्ति बहुत कठिन लगती है, जो सोचता है कि अकेले में भगवत भक्ति करूंगा वो माया का गुलाम है या भ्रम में है, बहुत बड़े भ्रम में है, इल्यूजन में है, असंभव है भगवत भक्ति। इसलिए प्रभुपाद ने जानबूझ के इस मिशन को स्थापित किया है जिसका नाम क्या है, कृष्ण भावनामृत संघ। संघ के बिना नहीं, और वो भी किसका संघ, भक्तों का, अभक्तों का नहीं, क्योंकि वैष्णव का मतलब ही है असत संग त्याग, जो सत नहीं है या जिनकी रुचि सत्य शाश्वत चीजों में नहीं है, ऐसे लोगों का संग त्याग करना या करता है वही उसी को वैष्णव कहा गया है। वैष्णव आचार, उसको ही वैष्णव का आचरण कहा गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो कभी अपने आप को अकेले नहीं रखते थे, हमेशा भक्तों के संग में रखते थे। वो अपने गंभीरा में जो उनके रूप से वहां दो भक्तों के संग में सर्वदा रहते थे, रामानंद राय स्वरूप दामोदर, इन दोनों से कृष्ण कथा करते रहते थे। और जब बाहर निकलते थे तो सारे भक्तों के संग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये महाप्रभु का कार्य था। अपने अंतरंग पार्षदों के संग में कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, अपने अंतरंग पार्षदों के संग में कृष्ण कथा में मग्न रहते थे। और जैसे सर्व सामान्य लोगों के बीच में आते थे तो नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन किया करते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अपने जो 18 साल है वो बिताए, और 6 साल चैतन्य महाप्रभु ने ट्रैवलिंग किया, 2 साल वृंदावन गए, 4 साल दक्षिण भारत, और 24 साल नवद्वीप में रहे। 24 साल की आयु में संन्यास लिया ना उन्होंने। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो 48 साल की थी, तो उनकी इस लीला में ही हमें सारी शिक्षाएं मिलती हैं। हाँ, क्योंकि शास्त्रों को यदि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में देखना है कि शास्त्रों को कैसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकल अप्लाई किया जा सकता है तो चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य महाप्रभु का जीवन है। महाप्रभु है, महाप्रभु का जीवन है कि शास्त्रों को कैसे अपने में उतारा जाए, अप्लाई किया जाए लाइफ में, डे टू डे लाइफ, वो महाप्रभु का चरित्र है जिसमें सारी चीजें हैं। चैतन्य महाप्रभु को मायापुर नवद्वीप के लोग जब आते थे मिलने जगन्नाथपुरी में 4 महीने के लिए उनका संग करते थे, जब वो वापस जाते थे तो जाने से पहले पूछते थे प्लीज कुछ इंस्ट्रक्शन दे दो। हर साल वो अलग अलग शिक्षा देते थे और वही सेम शिक्षा वही होती थी लेकिन उसका उन्नत लेवल देते थे। हाँ, क्या है, दो ही शिक्षा देते थे, भक्त सेवा नाम संकीर्तन, महाप्रभु कहते थे ये दो ही चीजें। फिर अगली बात कहते थे कि भक्त कौन है, तो फिर महाप्रभु थोड़े उन ऊपर मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी ऐसी व्याख्या करके उनको शिक्षा देते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन है इस महत्वपूर्ण शिक्षा को प्रस्तुत करता है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि भगवान के भक्त भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। जिस प्रकार से आज कालिया कृष्णदास का आविर्भाव तिथि है शायद, तो उनके बारे में जैसे मैंने पढ़ा था, प्रसिद्ध कालिया कृष्णदास त्रिभुवने गौरचंद्र लभ्य है जहार स्मरणे। कालिया कृष्णदास सारे त्रिभुवन में बहुत अधिक प्रसिद्ध है और जिनका स्मरण करने मात्र से गौरचंद्र की प्राप्ति होगी, लाभ होगा। तो देखो कितना पावरफुल है भक्तों का स्मरण करना। तो ऐसे कालिया कृष्णदास जो उनका श्रीपाट जहां वो रहते थे, आकाई हाट नाम का विलेज है कटवा बंगाल में, और फिर उन्होंने वो अपने विग्रह की पूजा करते थे जिनका नाम था काला चांद। क्या नाम था कृष्ण का, काला चांद, उनका विग्रह की, उस विग्रह की पूजा करते थे। और उन्होंने अपना अपना जो अंतिम समय है वो वृंदावन में बिताया भजन करके। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है काला कृष्णदास बड़ा वैष्णव प्रधान, नित्यानंद चंद्र बिनो नाही जाने नाम। तो कृष्णदास कविराज कहते कि काला कृष्णदास बड़ा वैष्णव प्रधान, सारे वैष्णव में प्रधान प्रमुख भक्त थे काला कृष्णदास। उनका गुण क्या था? नित्यानंद चंद्र बिनु नाही जाने आ, नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था उनको। तो इस प्रकार से भगवत भक्ति भगवत प्रेम सरल हो जाता है जब हम भगवत भक्तों का आश्रय लेते हैं। जब इंद्र ने अपराध किया था कृष्ण के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति इतनी घनघोर वर्षा करके, तो ब्रह्मा के पास गए कि क्या करना चाहिए। इंद्र को कहा कि कृष्ण जिनसे प्रेम रखते हैं ना उनका आश्रय लो और उसको ले जाओ। तो भगवान किससे प्रेम रखते हैं? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण गाय और विष्णु ब्राह्मण। तो इंद्र ने किसको किसके चरण पकड़ के आया? सुरभि गाय को लेके आया। तो कृष्ण शांत हो गए। पहले भगवान ने सुरभि का दर्शन किया और देखा कि सुरभि के चरणों में कोई और गिरा नहीं, इंद्र आप ठीक है फिर ठीक है, नहीं तो भगवान बहुत बड़ी क्लास लगाने वाले थे। वैसे भगवान ने उनके अहंकार को चूर्ण चूर्ण कर दिया। इस प्रकार से हमारा आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित होता है जब हम भगवत भक्तों के सर में भक्ति करते हैं। इस प्रकार से काला कृष्णदास का आज आविर्भाव है। काला कृष्णदास आविर्भाव तिथि महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय।